ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता दूसरा अध्याय 13वां श्लोक बराबर। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्णा। देहिन आप एक मिनट, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था से फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रेसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। इसका एक पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, बहुत लंबा पैराग्राफ है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलते रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर भी अंततोगत्वा मतलब अंत में एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में चला जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न तो द्रोण के लिए कोई शोक करने का कारण था, अपितु उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था कि उन्हें अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे अपने नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर ही प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही, अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक को आप पहले पढ़ चुके हो क्या? इसी बार पहली बार पढ़ रहे? ये श्लोक बहुत ही फंडामेंटल श्लोक है, मूलभूत, इसको हम कहते हैं ना ABCD, और ये दूसरे अध्याय में कहा गया है। पहले अध्याय में क्या हो रहा है? पहले अध्याय में केवल अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ही बोल रहे हैं, और जब तक अर्जुन बोल रहे हैं तब तक भगवान शांत है, क्योंकि दो व्यक्ति एक साथ बोल नहीं सकते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति बोल सकता है, या तो पत्नी या तो पति, दोनों साथ में बोलेंगे तो फिर कौन सुनेगा। उसी तरह से जब तक अर्जुन का प्याला खाली नहीं हुआ है तब तक भगवान उसमें कुछ डाल नहीं सकते, इसलिए वो रुके आराम से। जब इनका सब कुछ खाली हो गया और बोले अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता है, और जो बोल दिया मैंने वो भी मैं कंफ्यूज हूँ उसके बारे में, सही बोला कि गलत बोला, और अभी मैं इतना भ्रमित हो गया हूँ कि क्या सच है क्या नहीं सच है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्ते हम स्यादि माम त्वाम प्रपन्नम, अभी इस कारण मैं दोस्ती वोस्ती का रिश्ता छोड़ के आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ, आप भी दोस्ती छोड़ के मेरा गुरु बनो और मुझे उपदेश करो, तब मेरा कल्याण हो सकता है। मतलब पूरा बुद्धि के द्वारा शास्त्र के द्वारा उन्होंने आर्गुमेंट किया था, ऐसा नहीं कि वो ऐसे इतने ऊंचे व्यक्ति थे, वो इतने प्रगल्भ इतने बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति थे, आर्य कुल के थे, तो जो भी उन्होंने बताया वैसे कुछ लूज आर्गुमेंट नहीं थे, वो शास्त्रोक्त थे। फिर भी देह भाव में रहते हुए जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो उसके लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्यों, देह भाव, आत्मदेह भाव बोलते हैं उसको, यानी कि मैं हूँ और मैं ये शरीर हूँ, इस भाव में रहते हुए अगर बहुत ज्ञान की बातें भी करेंगे ना तो भी वो हवा में ही रहेंगी, समझ में आता है आपको, हवा में रहने का मतलब क्या होता है, वो ग्राउंड रियलिटी को टच नहीं कर सकते, वो केवल सिद्धांत एक स्तर पर, व्यवहार एक स्तर पर, जब व्यावहारिक स्तर पर आप बात करेंगे तो वो उसको व्यवहार में उतार सकते हैं, लेकिन देह भाव जो है ना, देह भाव का मतलब क्या होता है, अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को उस भाव से आसक्त रखना, मेरा शरीर, मेरा शरीर के साथ जो संबंधित चीज़ें हैं, मेरा परिवार है, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरा अधिकार, मेरा पोजीशन, मेरा देश, मेरा गांव, ये जो बातें हैं देह से संबंधित बातें ना, ये मैं भारतीय कब हूँ, जब मेरा शरीर भारत में जन्म लेगा तो भारतीय बनेगा, तो भारत के सारा संदर्भ जो है, ऑल द रिलेटिविटी ऑफ इंडिया बिकम माई रियलिटी, है ना। और मेरा शरीर अगर अमेरिका में जन्म हो गया तो मैं अमेरिकन बन जाऊंगा, तो वहां की जो भी रिलेटिविटी है वो मेरी रियलिटी बन जाएगी। ये स्थिति में जब हम कुछ बोलते हैं तो वो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, और वो जो आज मैं बोल रहा हूं उस भाव में, वो कल तक टिक नहीं पाएगा, कल कुछ दूसरा विचार मन में आएगा, क्यों, क्योंकि जो शरीर और उसके संबंधित जो चीज़ें हैं वो टेम्पररी रहती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, हम लोग कुछ समय जो थे आज बदली हो गए हैं, आज जो हैं वो कल बदली हो जाएंगे, कुछ चीज़ यहाँ पर परमानेंट होती नहीं है। जब तक वो शरीर के स्तर पर होती है वो टेम्पररी होती है, इसलिए बदलती रहती है, और जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं होता है, सत्य वो है जो शाश्वत रहता है, हर स्थिति में वो बदलता नहीं है, वैसे रहता है, आप बुढ़े हो जाएंगे फिर भी वैसा ही रहेगा वो सत्य, हम बदलेंगे। तो उस सत्य के साथ में अगर हमको जुड़ना है तो हमको देह भाव से मुक्त होना पड़ेगा। यहाँ पर बैठ के ये वाक्य कहना बहुत आसान है, लेकिन देह भाव से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई होता ना कि हमारे कॉलेज में लोग ना कुर्सियों पर वो च्युइंगम रखा करते थे, वो फिर आदमी आगे बैठ जाता उसके ऊपर, फिर जब उठने का करते थे प्रयास तो उठ नहीं सकते थे, कुछ चिपका हुआ है, या तो कपड़ा फाड़ के उठो या तो कुछ करो अभी उसके लिए। तो अगर वो च्युइंगम 10 किलो का होगा समझो, और हम बैठ गए उसके ऊपर, तो क्या होगा हमारा, वैसे ही कुछ आसक्ति का होता है, एक बार आसक्ति चिपक गई तो वो च्युइंगम तो ठीक, फिर भी आप केमिकल से निकाल सकते हो, लेकिन ये नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान ने सबसे पहले जो है ना इस प्रकार की बातें करना शुरू किया, ABCD, हु आर यू, आप कौन हो, तो बताया कि आप आत्मा हो, आप जो समझते हो नहीं हो, आप आत्मा हो, पहले ही समझना जरूरी है, कम से कम बुद्धि के स्तर पर क्यों ना हो, फिर व्यावहारिक स्तर पर बाद में समझेंगे, लेकिन पहले कम से कम बुद्धि के स्तर पर आपको स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा हूँ, और उसके पहले आपको समझना होगा कि मैं जो समझता हूँ वो नहीं हूँ, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। प्रभुपाद के पास ना दो बहुत कुरूप दिखने वाली साउथ अफ्रीकन और बहुत मोटी दो लेडीज आ गई, जो यंग थी लेकिन बहुत मोटी थी बहुत, और सब लोग उनको देखते थे तो पहले उनको शरीर को देखते थे कितना बड़ा शरीर है। तो प्रभुपाद के पास आए वो, और कैसा ना मोटे लोगों का बहुत लोग निंदा करते हैं, हंसते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं, तो हर जगह पे उनको यही नजरें सहन करनी पड़ती लोगों की, क्योंकि वो उनको नहीं दिख रहे, उनको शरीर को ही देख रहे हैं। तो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद जी बोले, यू आर नॉट दिस बॉडी। आपने सुना मैंने कहा, प्रभुपाद ने उनको बताया, यू आर नॉट दिस बिग बॉडीज, यू आर स्पिरिट सोल। तो उधर ही प्रभुपाद को सरेंडर हो गए वो, क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो मुझे हमें अपने शरीर के आधार पर नहीं देख रहा है, और ओपनिंग स्टेटमेंट यह है कि दुनिया आपको आपके शरीर को देखकर ताने मारती होगी, लेकिन मैं आपके आत्मा को देख रहा हूं कि आप वो नहीं हो जो आप समझते हो, आप आत्मा हो, उस सुंदर कृष्ण के आप अंश हो, सुंदर अंश हो। तो वहीं वो भक्त बन गए, क्योंकि उनके जीवन में वो शरीर एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था, एक बड़ा अवरोध था वो किसी भी चीज में, जहां जाओ वहां पर कह रहे मोटी आ रही है, मोटी आ रही है, मोटी देखो कितनी मोटी है इस तरह से। तो सत्य से अवगत होना बहुत जरूरी है, और किसका शरीर बहुत सुंदर भी होगा तो उस पर गर्व करता है कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतने, मेरी आंखें इतनी सुंदर है, मेरे बाल इतने सुंदर है, मेरे सब कुछ सुंदर है मेरा। और वो भी एक प्रकार का बड़ा अवरोध है, क्योंकि उसी में अटके रहेंगे तो फिर आगे वही है ना, वो भी एक दिन नष्ट होने वाला है, या तो खराब होने वाला है, या तो बुढ़ा होने वाला है, या तो कुरूप होने वाला है ना। ये दहेज जो बात करें ना, दही नोस्मिन, ये समझना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि मुझे अभी वो मैरिलिन मनरो का एग्जाम्पल याद आ रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं मैरिलिन मनरो को? वो हमारे ना, हमारे बचपन की वो वर्ल्ड की सबसे टॉप हीरोइन थी, और उसकी सुंदरता इतनी 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 थी कि आम जनता नहीं, देश विदेश के राजा उसके पीछे थे विवाह करने के लिए। किंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड वर बिहाइंड हर। और वो इतनी सुंदर थी कि एक दिन वो 40 इयर्स की हो गई, और 40 साल की उम्र में उसके चेहरे पर पहली झुर्री प्रकट हुई, फर्स्ट रिंकल। उसके पहले बहुत मेहनत करके उसने संभाल कर रखा था, लेकिन उसको ध्यान में आया कि ये रिंकल जो है अभी परमानेंट है, उसको अभी कितना भी मेकअप करेंगे तो वो छुपेगी नहीं। तो फिर बहुत कोशिश किया, बहुत सारा किया, और एक झुर्री आई, और एक झुर्री आई, इस तरह से बहुत सारी झुर्रियाँ एक के बाद आने लगी, यू नो रिंकल्स। तो आप देखिए, इतनी वर्ल्ड फेमस थी वो, उसने बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अपने उस शरीर से, उस दर्शन से अपने इतनी आसक्त थी वो कि जनता मुझे अभी रिंकल्स के साथ देखेगी, इस विचार से वो त्रस्त हो गई। एंड शी स्टॉप्ड गोइंग आउट। अभी जब कोई चार दीवारी में अपने आप को बंद करता है तो क्या होता है, बताइए आप मुझे, व्हाट हैपेंस, टेल मी, क्या विचार है आपका, क्या होता है? डिप्रेशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब चार दीवारी में कोई आदमी बैठता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान, एक्टिव से एक्टिव, अगर बैठ गया एक बार चार दीवारी में तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन भ्रष्ट हो जाता है। और वैसे ही यथावकाश अपने आप को छुपाते 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 एक दिन वो फुल डिप्रेशन में गई और उसने आत्महत्या कर ली। ये किसकी वजह से हुआ? केवल अज्ञान की वजह से, केवल सत्य से परिचित न होने की वजह से वो आत्महत्या तक पहुंची। एक सो कॉल्ड तथाकथित यशस्वी जीवन भी उसने बर्बाद कर दिया अपने हाथों से, क्योंकि जीवन का सत्य लोगों को पता नहीं है तो उनकी ऐसी भयंकर अवस्था होती है। और बाकी लोग जो है वो जानते हैं कि मैं जो हूं वो रहने वाला नहीं हूं, बदलने वाला हूं। आज भी आप सब लोग बैठे, मैं बैठा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, आप कल डिफरेंट थे, वो जो खेल रहे ना वैसे थे, आज आप डिफरेंट हो गए हैं, और वो खेलने वाले हैं तो कल ऐसे बैठेंगे यहाँ पर आके, और उनके बच्चे वहाँ खेलेंगे पीछे, और यही सत्य है। कुछ लोग हमारे ब्लैक दाढ़ी लेकर आप भी बैठे हुए हैं, अगले साल आऊंगा शायद व्हाइट दाढ़ी में आएंगे, हु नोज। और ये इस तरफ भी सत्य है भाई, इधर ही नहीं इधर भी सत्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस क्या कहते हैं उसको इनएविटेबल, मतलब जो निश्चित है, जब तक इस निश्चित सत्य के बारे में हम अवगत नहीं हैं, तो ऐसी दुख भरी हमारी अवस्था होगी जो उस मैडलिन मंदरों की हुई। और जिस व्यक्ति को उसका ज्ञान है वो ऐसे बदलाव से विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता उससे, वो जानता है कि ये ऐसे ही है। कुछ भी करो आप दुनिया में, आज तक कॉस्मेटिक दुनिया में ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है जिससे आपके मुंह में रिंकल्स आना ही बंद हो जाएगा, और जो भी आया है बोटॉक्स के नाम से वो सब पॉइजन है और कैंसर का कारण है सब। मतलब क्या है, नहीं है उपाय, आप यहाँ वहाँ से हाथ मार रहे हो लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और अगर कुछ भी आपको नकली कुछ हो रहा है तो उसका परिणाम बहुत भयंकर है ना। और एक एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, माइकल जैक्सन का, अरे बाप रे कितनी सर्जरी की उसने लाइफ में, पूरा नाक बदल दिया, पूरा सब कुछ बदल दिया, पूरा रंग बदल दिया, पूरा स्किन बदल दिया, क्या क्या नहीं किया उसने, अंजाम क्या हुआ, ऐसी मौत उसको मिली कि वो आप में से कोई भी लोग चाहेंगे नहीं कि ऐसी मौत होनी चाहिए। इतनी भयंकर मौत, इतनी भयंकर मौत कि एक भिखारी भी रस्ते का अच्छी मौत मरेगा, और एक जो जिसका एक पूरा बेट था, टापू, एक आइलैंड उसका था, इतना संपत्ति था, लेकिन ना कोई बीवी है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई बच्चा है, कुछ कोई कोई है ही नहीं, सब ऐसे स्वार्थी लोग आसपास भरे हुए थे। और उसमें से डॉक्टर ने एक ने उसको इंजेक्शन देके उसको ओवरडोज करके ख़त्म कर दिया, क्यों, अज्ञान, ओनली बिकॉज ऑफ अज्ञान। जीवन के सत्य के विषय में पता नहीं है क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को पता करना है कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या है, कोई बता सकता है, एक आदमी आपके इसमें, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, टू रियलाइज योर सेल्फ, बराबर ना, एवरीबडी एग्रीज विथ मी, सब लोग मंजूर है इस बात से, टू रियलाइज द सेल्फ मतलब सेल्फ के बारे में जो रियलिटी है उसको समझना, जैसे है वैसे, जैसा आप समझते वैसे नहीं, जैसे वो है वैसे समझना, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ है, नथिंग बिग, हाँ, कोई सिद्धि विद्धि जादू वादू का काम नहीं इसके अंदर। सत्य को सत्य के रूप में ही समझना, और वो सत्य के रूप में समझकर ही चलना, इसी को स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। हम लोग सत्य को जैसा हमको लगता है वैसे समझते हैं, और जैसा हमको लगता है वैसे ही चलते हैं। तो एक स्टेप हो गया गलत समझना, एक समझ हो गया गलत समझ के गलत ही चीज पर आगे बढ़ना, और आगे जो कार्य करेंगे वो जो वो थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री गलती हो जाएगी ना वो, क्योंकि शुरुआत ही गलत है उसकी। यही हमारा सबका जीवन है, जब तक वो सत्य के स्तर पर अवगत नहीं होता है तब तक केवल दुखी दुख होता है। वैसे मैरिलिन मंदरो को कोई दुखी होने की जरूरत नहीं थी, अगर उसको पता होता कि भाई मैं भी बुढ़ी होने वाली हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट इट। जो एक्सेप्ट करते हैं वो सफ़ेद बाल लेकर भी सेलिब्रिटी रहते हैं, दे आर स्टिल सेलिब्रिटी ओनली। दे बहुत, अभी अमिताभ बच्चन कैसे सफ़ेद दाढ़ी लेकर घूमता है, दुनिया भर कॉपी करते हैं उसको लोगों की। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन बुढ़ा कैसे होगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, फाइन इट्स ओके, लाइफ कंटिन्यूज। अभी भी मिंटिंग बनी, पहले भी मिंटिंग बनी, व्हाट्स द डिफरेंस। केवल सत्य को एक्सेप्ट करना है आपको एज इट इज। तो यहां पर क्या बताया है, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा। कौमारम मैंने बचपन की अवस्था में रहेगा, फिर युवा अवस्था में आएगा, फिर एक दिन बुढ़ा हो जाएगा, फिर अति बुढ़ा हो जाएगा, फिर एक दिन मर जाएगा, मरने के बाद में नया शरीर प्राप्त करेगा, फिर वही साइकिल है, बाल्यपन से युवावस्था में, वृद्ध अवस्था में, अति वृद्ध अवस्था में, मृत्यु की अवस्था में प्राप्त होकर फिर नया शरीर प्राप्त करेगा। ये न बदलने वाला साइकिल है, आप कितना भी कूदो, कितना भी हाथ पाँव झाड़ो, कुछ नहीं होने वाला है, यही सत्य है। कुछ भी करो, काल का प्रभाव किसी भी क्रिया से नष्ट नहीं हो सकता है, काल ऐसी वस्तु है जो धीरे धीरे शनै ही धीरे धीरे क्यों ना हो, आपके पास आप क्या समझते हो है आपके पास आज, वो सारा चीज वो छीन लेता है और ऐसे छीनता है कि आपको एकदम झटका लगेगा नहीं, लेकिन धीरे 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 सब कुछ छीन लेगा आपसे। जो भी आपके पास लगता है अभी थोड़ा एक चिंतन करो, मनन करो, क्या है मेरे पास, हाँ मेरे शरीर है, ये है, वो है, पैसा है, फैमिली है, यहाँ का घर है, उधर का है, जो भी आप समझ रहे हो वो सब काल जो है वो धीरे 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 आपसे छीनने वाला है और उस छीनने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। ये समझ में किसको आया ना, नंबर वन समझ में आया, और नंबर टू समझ में आया तो एक्सेप्ट किया, वो आदमी यशस्वी होता है जीवन में। वो बोट में जब चलते ना हम समुद्र में हम लोग, तो जब आप हवा की दिशा में चलते हो ना तो ये आपको स्पीड मिलता है। आप उन हवा के खिलाफ जाना चाहोगे तो कभी वहीं रहोगे आप, कुछ भी करो, कितना भी एनर्जी, कितना भी पेट्रोल खर्च करो, और हवा की दिशा में अपना वो चेंज करोगे ना तो वो एकदम गति से जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी क्या है, काल के साथ चलो, काल के विरोध में मत चलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल के विरोध में चलना, मतलब वही स्किन ग्राफ्ट करना और बोटॉक्स लगाना, फिर बालों को काला करना, फिर ये करना, फिर वो करना, बहुत सारी चीज़ें करना जो प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं है, काल के लिए भी अनुकूल नहीं है, जो आगे जाकर दुखा देने वाले आपको। तो आप कितना भी कोशिश करोगे, एक तो उसमें यश नहीं आएगा आपको, और आप भ्रम में रहोगे कि हाँ हाँ ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो भ्रम भी फूट जाएगा एक दिन और सत्य आपके सामने आएगा, और ऐसा बहुत ऐसा खतरनाक रूप में सत्य सामने आएगा आपके कि ये नहीं हो सकता। तो ये एक्सेप्ट करना, इसी में बुद्धिमानी है। जैसे आप समझो कुछ चोरी किया है, तो मैंने प्रभु जी मुझे बता रहे थे कल, चोरी किया है, आप आर्गुमेंट करेंगे 20 दिनार, और आर्गुमेंट करेंगे 40 दिनार, और आर्गुमेंट करेंगे 60 दिनार, ज़्यादा आर्गुमेंट करोगे 80 दिनार, बाद में बोला ठीक ठीक ओके ओके फाइन फाइन, क्योंकि देना ही है आपको, आप आर्गुमेंट करके जीतने वाले हो ही नहीं। बेस्ट वे पहले ही हाँ बोलता तो 20 करोड़ में काम हो जाता उसका, 20 दिनार में। तो क्या है, काल का प्रभाव ऐसे है, इस दिशा में है, आप कितना भी माथा फोड़ी करेंगे तो भी फिर भी आपको अपयश ही गिरने वाला है। तो बुद्धिमान क्या बोलेगा, अगर अपयश थोड़ा समय पड़ जाता है तो हाँ बोल दो, निकल जाओ वहां से, नहीं तो रहो वहां पर 2 घंटे आर्गुमेंट करते करते 20, 60, 80, 120, 140 होता जाएगा, आपको जीत तो मिलने वाली नहीं है उसके अंदर। तो प्रॉब्लम किस में है, स्वीकार करने में प्रॉब्लम है। अर्जुन का वही प्रॉब्लम था, उसको टाइम लगा थोड़ा समझने के लिए, ये सब रिश्तेदार जो है वो सब शरीर के लिए संबंधित है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा जाए फ्रॉम हायर प्लेटफॉर्म इफ यू सी, ये सब मरने वाले हैं सब लोग, एवरीबॉडी इज गोइंग टू डाई वन डे। और मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, और धर्म के पक्ष में जब मैं खड़ा हूं और कुछ मेरा कर्तव्य करने जा रहा हूं, तो ये सब टेम्पररी बंधन में फंसने का कोई कारण नहीं उसके अंदर, तो उलझे ही रहेंगे। अभी कैसे उलझ गए, देखो आप सबको अपने ही समझ रहे हैं, ये भी मेरे ही है, ये भी मेरे ही, ये भी मेरे में, ये भी मेरे, उसमें से आधे लोग इस तरह, मतलब 2 पार्टी बन चुकी है, एक पार्टी अधर्म के पक्ष में, एक पार्टी धर्म के पक्ष में है। अभी आपको लड़ना है, लेकिन अज्ञान ऐसा है कि अरे ये भी मेरे, ये भी मेरे, तो क्या हो गया है, जो धनुष वर्ल्ड फेमस था और वो चलाने वाला भी वर्ल्ड फेमस था, उसके धनुष की आवाज सुनते ही इंद्र तक चौंक जाता था। वो क्या हो गया उसका, वो धनुष उसके हाथ से फिसल रहा है। फायदा क्या उसका, अगर आप उसको पकड़ सकते नहीं हो तो चला कैसे सकते हो, और वो जो इतना पूरा है ट्रेनिंग लिया था चलाने का, वो आज कर ही सकते नहीं हो, है ना। अभी आपने पूरा एग्जाम का पढ़ाई किया, आपका दिमाग पूरा रेडी है नॉलेज के साथ में, और आपको एंड में चक्कर आती है समझो, क्योंकि रात को आप सोए नहीं थे, खाना भी नहीं खाया था, तो आपका बीपी लो हो गया और उल्टी हो गया आपको और चक्कर आ गई। तो इतना सब पढ़ाई करके एग्जाम में लिख सकते हैं क्या आप, वो सब नॉलेज भर के कहाँ रखा है दिमाग में, और दिमाग भी अभी आउट ऑफ फंक्शन हो गया है। तो सब कुछ होते हुए भी आप टॉप गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर, सब कुछ आप प्रीलिम में भी आपने गोल्ड मेडल लाया हुआ है, टॉपर हो आप, लेकिन अगर वो जो दिमाग है जिसमें आपका नॉलेज भरा हुआ है वही अगर बेकार हो जाएगा, तो उस समय वो आप 0 मार्क में बाहर आएंगे, गोल्ड मेडल तो भूल ही जाओ। तो अर्जुन की क्या अवस्था हुई, सब कुछ है उसके पास, लेकिन ये अज्ञान होने की वजह से वो इतना परेशान हो गया, वो कहता है मेरे रोम जो है वो कांप रहे हैं और हाथ पांव जल रहे हैं और धनुष फिसल रहा है, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, गलित गात्र हो गया हूँ, मैं बैठ जाऊंगा अभी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभी आप समझाओ क्या करना है। ऐसी अवस्था होती है अज्ञान की वजह से, यू गेट सो बिविल्डर्ड दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू ओनली। बड़ा से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी, बड़ा से बड़ा गोल्ड मेडल का व्यक्ति भी अगर एग्जाम के दिन कंफ्यूज हो गया समझो तो क्या कर सकता है वो, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। तो अगर दिमाग सत्य के सर पर रहेगा ना, अवगत हमेशा इन रिलेशन विथ ट्रुथ, इन अलाइनमेंट विथ ट्रुथ रहेगा वो, तो वो हर समय यशस्वी रहेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑप्टिमल बेस्ट परफॉर्मेंस कब दे सकता है? जब सत्य से अवगत रहेगा। आपको पता है कल एग्जाम है, आज रात को 8 घंटा सोना जरूरी है, तभी वो कल दिमाग का पासवर्ड खुलेगा। और रात को बोलेंगे ना आज तो पूरा पढ़ाई करना है, तो दिमाग का पासवर्ड कल चेंज हो जाएगा सुबह, और खुलेगा ही नहीं, वो कुछ याद ही नहीं आएगा। तो सत्य क्या है कि आज जितना पढ़ाई हुआ ना उतना करो और सो जाओ, ताकि सोओगे तो कल वो पासवर्ड से खुलकर आपका जो रिप्रोडक्शन है वो होगा और अच्छे मार्क मिलने की संभावना है। इसलिए मैं जब भी हरे कृष्णा में आया ना, तो एग्जाम के दिनों में हम लोग 8 घंटा सोते थे, सब हमारे डिवोटीज डॉक्टर्स। तो बाकी लोग बोलते थे अरे बाप रे आप 8 घंटा सोते हो, तो बोला अभी क्या करें, जो हो गया वो हो गया, अभी सोना है, और जो अंदर अंदर गया है नॉलेज उसको बाहर निकालने के लिए 8 घंटा नींद आवश्यक है। इसलिए हम लोग आराम से सोते हैं, आराम से सोते हैं, फर्स्ट क्लास आके पेपर लेके आते हैं, और आप लोग उल्टियाँ करते हो वहाँ पर, आपको सर दर्द होता है, हेडेक होता है, क्या क्या होता है, रात भर परेशानी पढ़ाई करते रहते हो, इतना हैवी हेडेक में जाके पेपर क्या लिखेंगे आप। तो दिस इज रियलिटी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि आपका एक लिमिटेशन है, वो सत्य है। क्या लिमिटेशन क्या है? किसी भी कीमत पर आपकी आयु आप बढ़ा नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर आप बुढ़ापा आने का जो स्पीड है उसको रोक नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर आपके बाल सफेद होने का जो क्रिया है उसको आप रोक नहीं सकते हो, किसी भी कीमत पर जो रोग आपको हो रहा है उसकी प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हो, कितना भी आप कुछ भी करो, जब आपको बीमारी होना है हो ही जाएगा आपको, यू कांट इवन अवॉइड। हम सब जानते हैं, हमको सब मालूम है सिम्टम्स क्या है उसके वगैरह, लेकिन वो सिम्टम जाने के बाद भी हमको बुखार आता ही है, कितना भी प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लो, जब बीमार पड़ना है आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जस्ट एक्सेप्ट, वही अर्जुन को बता रहे हैं, अरे जस्ट एक्सेप्ट कि आप समझ रहे हो कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, गुरुजन हैं, पितामह हैं, सब बड़े बड़े लोग, तुम्हारे ही खुद के लोग हैं, लेकिन एक्सेप्ट करो कि आज वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, और तुमको ज्यादा इमोशनली उधर रोना नहीं है बैठ के, जो भी सामने खड़ा है शत्रु के पक्ष में जाकर उसको आप बाण चलाना है उसके ऊपर, ये उसको एक्सेप्ट करने को मुश्किल हो रहा था। हाउ विल आई डू दिस, मैं कैसे करूंगा इसको, यही तकलीफ थी उसको, थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हाउ इट इज। पहले धनुष उठाया था अपने हित के लिए कि मेरा बदला लेना है, मेरी वाइफ को ऐसा ऐसा किया था उसका बदला लेना है, और दूसरा मेरे को वनवास में भेजा था सब लोगों को उसका बदला लेना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, अपना एजेंडा लेके वो आया था, और अपना एजेंडा अपना नॉलेज लेकर जब खड़ा हो गया तो ये उसकी हालत हो गई, डाल दिए नीचे, फिर कुछ सुना भगवान से, फिर दोबारा धनुष को उठाया, लेकिन अभी एजेंडा बदले हो गया था पूरा, अभी अपने सारे एजेंडा कैंसिल और भगवान का एजेंडा टिक मार्क। अभी आप जो बोलेंगे हाँ क्या क्या उन्होंने करिष्ये वचनम तव, बीच में क्या हुआ, बीच में सत्य को स्वीकार किया, जो सत्य है वैसे ही उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, थोड़ा डिफिकल्टी हुआ एक्सेप्ट करने में, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो फिर वो रोम जलना और शरीर जलना, धनुष फिसलना, वो सब बंद हो गया, उसी हाथ से जिसमें से फिसल गया था उसी हाथ से उठाने के काबिल हो गया, उठाया बाण भी चलाया, खुद के लिए और खुद के एजेंडा के लिए नहीं चलाया, भगवान के एजेंडा के लिए चलाया। ये समझना है हमको अल्टीमेटली यशस्वी क्यों हुआ, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी सत्य के विषय में वो त्याग दिया, और जो भगवान ने अंडरस्टैंडिंग दिया सत्य के विषय में उसको स्वीकार किया, इसलिए यशस्वी हो गया, इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने भी यशस्वी हो गया, क्योंकि जो भगवान ने अपने स्तर पर से जो अंडरस्टैंडिंग दिया, जो ज्ञान दिया, उसको स्वीकार किया उन्होंने। अभी इसमें क्या ज्ञान दिया उन्होंने? अरे तुम कुछ भी करोगे फिर भी इन चक्र में से गुजरोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। आगे क्या बताया? धीरस तत्र न मुह्यति। धीर का मतलब क्या है? जो ज्ञानी है, उसको पता है सत्य क्या है, वो व्यक्ति ये होने वाले बदलों को देकर चकराता नहीं है, वो भ्रमित नहीं होता है, वैसे रहता है, उसको पता है ये होने वाला है। गता सुन गता शुमश्च नानु शोचंती शोचंती पंडिता। अरे जो जा रहे हैं वो जो जन्म ले रहे हैं, दोनों को देखकर ज्ञानी व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, वो जानता है कि जन्म लेने वाला भी अनिश्चित है, मरने वाला भी अनिश्चित है, दोनों अशाश्वत है और ये सत्य है, ये होने वाला है, इसको बदल नहीं सकते हम, तो उसे रोना क्या जरूरत क्या है। हाँ भाव प्रेम होगा तो रोते हैं हम लोग, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं उसको कि भाई ये मेरे पिताजी गए, अभी नथिंग कैन ब्रिंग हिम बैक, गए निकल के, मैं कितना भी मत्था फोड़ूं और 2 लीटर अश्रु बहाऊंगा फिर भी वो सत्य नहीं बदलने वाला है। या तो उसको आप ज्ञान के आधार पर स्वीकार करो, अपना भाव व्यक्त करो, दुख व्यक्त करो, लेकिन ऐसा सर पीटने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे, श्राद्ध करेंगे उनका, उनको याद करेंगे, उनके द्वारा जो उनकी विल थी उसको पूरा करेंगे, वो करो आप, लेकिन होने वाली स्थिति को बदलने का प्रयास मत करो, ना बदलेगा नहीं वो। हमारे भी डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, अभी भी हैं, उनको पिताजी से इतना प्रेम था और उनको बहुत बड़ा कैंसर हो गया था, तो वो डॉक्टर थे ना, वो तो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं पिताजी को मरने नहीं दूंगा, मैं पूरा बुक्स छान मारूंगा, रिसर्च के एडवांस जितने भी इंटरनेट में आए हैं सब ढूंढ लूंगा और कुछ ना कुछ उसका उपाय करूंगा, क्योंकि इमोशंस ज़्यादा हावी हो रहे थे, ज्ञान थोड़ा दब रहा था, सत्य के विषय में ज्ञान था वो दब रहा था, इमोशंस उस पर हावी हो रहे थे। तो हम लोग बाकी 2-4 लोग बैठे हैं, उनको समझाया, देखो भाई ये है ना, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, आप कितना भी हाथ पाँव मारोगे ना तो भी ये अपनी ही दिशा में जा रहे हैं आगे। तो उस दिन बहुत रोए वो, क्योंकि अपने इमोशंस को त्याग करके सत्य को स्वीकारना पड़ा, तो उस दिन वो बहुत बहुत रोए और रोने के साथ में इमोशंस को त्याग कर दिया उन्होंने और बोला कि अभी आप जो करना है उचित, जो उचित लगता है वो करो, और कुछ दिन का पिताजी का देहांत हो गया। तो ये किया, प्रॉब्लम क्या है बीच में, जो इमोशंस हावी हो रहे हैं ना वो सब गड़बड़ कर देते हैं, और बाद में वो आप कितने भी इमोशंस हावी हो जाएंगे और प्रयास करते रहेंगे, एंड तक करते रहेंगे, और वो फिर जब डेथ हो जाएगा तो आप टूट जाएंगे फुली, क्योंकि आपके इमोशन इतने हाइप हो गए उसके विजय विषय में कि आप उस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरे इतने जोर से प्रयास करने के बाद भी मृत्यु हो गई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्यों होना चाहिए, क्या फायदा है मेरे MBBS नॉलेज का, MD नॉलेज का, मेरे रिसर्च का, जो मैं इतना प्रयास किया, मैंने इतना कोशिश किया, कोई वैल्यू नहीं उसकी। ये सब सोचकर आदमी टूट जाएगा पूरा, 10 दिन काम पे ही नहीं जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा उसको। तो सत्य जब कड़वा होता है, अप्रिय होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है, और वो आपके सामने आता है तो क्या होता है, पहले शॉक लगता है आपको, अरे ऐसे कैसे हो गया, फिर आप डिनाई करते हो उसको, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं हो सकता ऐसे, ये फिर क्रोध करेगा वो, ऐसे क्यों हुआ, वो समझने के बाद में आदमी बार्गेन करेगा, कुछ भी करो उस सत्य को बदली करने के लिए, फिर डिप्रेशन में जाएगा, और बाद में तकदीर अच्छी होगी तो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये सत्य को जो है ना, जो प्रतिकूल दुखमय सत्य होता है, कठोर सत्य होता है, कटु सत्य होता है, उसको स्वीकारने में ये स्टेप्स हैं, हम लोग सब लोग उसमें से गुजरते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सब स्टेप्स में गुजरना है। अगर आप ज्ञानी हो, धीरस तत्र न मुह्यति, अगर आप धीर व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, तो आप तुरंत उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको वो माथा फोड़ी, गुस्सा, शॉकिंग, डिनायल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन जाने में कोई जरूरत नहीं है, इट्स योर चॉइस। अज्ञान में रहकर ये सारे खतरनाक स्टेप में से गुजरो और फिर आपको एक्सेप्ट करना ही है मजबूरी से, वो करो, या तो ज्ञान प्राप्त करो और समझ कर काम करो, और जो भी हो रहा है उसको शांति से एक्सेप्ट करो, आप शांति से एक्सेप्ट करो या माथाफोड़ी करो, सत्य का रास्ता अपने ही रास्ते में चलने वाला है, कभी बदलने वाला नहीं, यही समझना बुद्धिमानी है। इसमें डिफीट नहीं है, डोंट थिंक कि अरे हम लोग सरेंडर हो गए, हमने फाइट किया ही नहीं, अरे फाइट उससे करते हैं जिसमें यश मिलता है, जिसमें अपयश निश्चित है, उसमें फाइट करके फायदा क्या है, जस्ट बेटर यू डोंट वेस्ट योर एनर्जी, एक्सेप्ट द ट्रूथ. इसलिए ज्ञान हमको दिया जा रहा है. जो होने वाला है वो होगा ही, जो सत्य है वो बदलने वाला नहीं है. या तो आप उसके बाद जूझो और दिन भर जूझते रहो, आपको वही पटक देगा उधर उसके बाद में, या तो आप जानते हुए पूरी तरह से शांति से उसको स्वीकार करो. दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज. वॉट एवर यू डू, हु केयर्स? टाइम इज नॉट गोइंग टू बॉदर व्हाट यू आर डूइंग. टाइम की अपनी एक शक्ति है, अपनी एक चाल है, उसी पे चलने वाला है वो. यही समझा रहे भगवान अर्जुन को. जब समझ गए तो दोबारा उठ गए, बोला अभी क्या करना है बताओ. नष्ट 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 मोहो स्मृतिर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव. अभी आप जो बोलेंगे ना वही करेंगे. मैं समझ में आया सब कुछ आप जो क्या बोल रहे हैं. पहले बहुत डिफिकल्टी में था मैं, अभी मैं समझ गया. अभी बोलो क्या करना है. बाद में जो बोला वो भगवान ने किया, थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन किया वही वो भगवान ने बताया. इसीलिए वो धर्म युद्ध में विजयी हो सका. और ये भी एक्सेप्ट किया कि मैं विजयी होऊंगा तो ये सब मरने वाले, तभी विजय होऊंगा. मतलब मैं जब विजय होकर राजा बनूंगा ना, ये तो कोई नहीं रहेंगे इसके अंदर से. जो उसको पहले स्वीकार करने में डिफिकल्ट था कि इनके बिना मैं राजा कैसे बनूंगा, पितामह भीष्म के बिना, द्रोण के बिना, ये सब मेरे गुरुजन वंदनीय जन है, इनके बिना मैं राजा बनकर क्या फायदा, कैसे रहूंगा उसके बिना, उससे अच्छा भीख मांगना अच्छा है, ऐसे सब उसके विचार थे. बाद में वो सब मर गए क्योंकि वो मरने वाले थे, क्योंकि अधर्म के पक्ष में थे. और वो सब मरने के बाद कोई बचा नहीं, केवल पांच लोग बचे. मतलब एक पांच पांडव बचे, वहां तीन लोग बचे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, बस इतने ही बचे. कोई कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक व्यक्ति कौन थे, तीन वहां नहीं, वो सत्य के सब तो वो यदुवंश है ना पूरा, वो तो वो एक व्यक्ति और है कौरवों के प्रति, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीन यहाँ के, पांच पांडव, बाकी सब हरि बोल. और वो सेना थी ना, सेना वो ऐसे की वैसे रही, बाद में वो नष्ट हो गई. सेना तो वैसे इंटैक्ट रही, सेना का प्रॉब्लम नहीं कुछ हुआ. तो ये सब सत्य है, ऐसा ही था. लेकिन फिर भी अर्जुन राजा बना ना बाद में. क्यों बना? क्योंकि सब सब समझ में आया था उसको कि अगर धर्म का राज स्थापन होना है तो ये होना ही वाला है. बेटर एक्सेप्ट इट. जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना एनर्जी बचेगा आपका, जितना लेट एक्सेप्ट करोगे उतना आप ही थक जाओगे. एक्सेप्ट करना ही है, थकने के बाद भी है, थकने के पहले, चॉइस आपका है. तो इस तरह से ये गीता का एक एक श्लोक है ना, इतना महत्वपूर्ण है. शंकर भगवान पार्वती को गीता का महात्म्य सुना रहे हैं. एक अलग किताब है वो, गीता महात्म्य, उसमें शंकर पार्वती का संवाद है. शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं कि गीता का महात्म्य क्या है. उसमें वो बताते हैं कि इन 700 श्लोकों में से एक श्लोक का एक चौथाई श्लोक भी अगर आप समझेंगे और समझ के जीवन में उतारेंगे तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है. 1/4, 1 फुल भी नहीं बताए, 1/4, दो ही बताए. एक समझो उसको, एकदम आत्मस्तर पर समझो, मतलब क्या, उतारने लायक समझो उसको, जीवन में उतार सकते हैं, वैसे व्यवहार कर सकते हैं. जो समझ में आया है वैसे ही व्यवहार कर सकते हैं. इतना आपको उस लेवल पर समझ में आया तो आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा और भगवत धाम की प्राप्ति होगी. तो या तो उसको आर्गुमेंट करते 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 जूझते हुए सीखो, या एज इट इज एक्सेप्ट करके सीखो, आपका चॉइस है. हर एक श्लोक में आर्गुमेंट करो, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये कि नहीं समझता है मुझे, आई डोंट एक्सेप्ट दिस. और समय को अधिक समय ले लो समझने के लिए. या तो श्रद्धा के तौर पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं इसलिए एज इट इज एक्सेप्ट करो, क्योंकि आर्गुमेंट के बाद भी सत्य तो बदलने, मैं बताया ना आपको, आर्गुमेंट के बाद भी सत्य तो बदलने वाला नहीं है. आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, इट डजंट मैटर, द ट्रूथ विल रिमेन सेम. तो बेहतर यह है, जहां पर इनएविटेबल है वहां पर बेटर यू एक्सेप्ट इजीली ओनली, जो बदलने वाला नहीं है उसको. जैसे यहां पर आएंगे बहरीन में तो गर्मी होगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू डोंट, यू मे हैव एसी, यू मे हैव एवरीथिंग, बट यहां से बाहर जाके कहीं और जाना होगा तो आपको गर्मी एक्सेप्ट करनी ही होगी. आपकी कार भी ऐसी होगी तो कार में उतर के अंदर घुसने तक आपको गर्मी का एक्सेप्ट करना ही होगा. यू कैन नॉट चेंज दैट. यू कांट हैव अ एनवायरमेंटल एसी, यू कैन हैव अ रूम एसी, यू कैन हैव अ स्प्लिट एसी, बट यू कांट हैव बहरीन एनवायरमेंटल एसी, वेयर होल द कंट्री इज एयर कंडीशनड, नहीं हो सकता है। ऐसा कोई नहीं आया अब तक। इवन इफ यू हैव आर्टिफिशियल रेन इन बिटवीन, फिर भी गर्मी आपको एक्सेप्ट करना ही है, इट विल नॉट चेंज। तो इसलिए मेरी आपको यही विनती है, ये किताब एक्सेप्ट करने में आप 10 साल लगा सकते हो या पहले ही बार समझ सकते हो, चॉइस आपका है। हरे कृष्णा। अभी आपको प्रश्न है तो आपके लिए 20 मिनट मिलते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं मुझे ना। यस, एनी क्वेश्चन? यस प्रभु जी। चेतो दर्पण मार्जनम, आपने सुना है इसको? शिक्षा अष्टक कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आत्मा को आत्मा के समझ, आत्मा की तरह समझना है। जैसे आप हो, अगर आपके आप जो हो वैसे आपको समझना है तो उसके लिए आपका फ्रेंडशिप बनाना पड़ेगा, आपके साथ में दोस्ती करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आदान प्रदान होगा, तो धीरे धीरे आपके बारे में समझ में आएगा कि आप कौन हो और क्या हो, कैसे हो। वैसे आत्मा को समझना उसका एक तरीका है, वो ये है भगवान का नाम जो साबुन की तरह होता है, तो मैल साफ करता है। हाँ, और आप जैसे हो वैसे आपके लिए प्रकट करता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, जैसे आप हो वैसे आपका परिचय आपको होगा जब आप भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। तो धीरे धीरे क्यों ना हो, जो आवरण आपके ऊपर लगा हुआ है उसको स्वच्छ करके वो आपके सामने आपको प्रकट करेगा। तो प्रक्रिया करना जरूरी है। हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते ना, एक्सपेरिमेंट, तो क्या करते हैं, एक लेते हैं पोस्टुलेट, ग्रहीतक कहते हैं उसको, समथिंग वी एक्सेप्ट, और उसके आगे हम उसको प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के बाद में जो आता है रिजल्ट उसको हम लोग कहते हैं बाद में थ्योरम बना देते हैं उसको। इट इज पोस्टुलेट देन एक्सपेरिमेंट देन इट बिकम्स थ्योरम। आप एक्सेप्ट करते हैं इसको? उसी तरह से अगर यहाँ पर कहा है कि आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, और यहाँ पर हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में, हम सारे सुन रहे हैं, अनुभूति नहीं है, तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा जप करने का, और जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनुभूति होगी कि मैं आत्मा हूँ, निश्चित रूप से। और अगर आप हनी का बॉटल खोलेंगे और उसको खाएंगे तो आपको क्या लगता है, ये आप कितना भी वर्णन करोगे ना तो ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब तक वो खुद खोल के नहीं खाएंगे तब तक आप क्या बोल रहे हो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी ढक्कन खोल के खाने की। उसी तरह से नाम का जप करने से क्या होता है, ये नाम का जप करने वाले को ही पता चलता है। सो एक ही तरीका है, भगवान का नाम जप करने से जैसे आत्मा स्वच्छ हो जाती है और आत्मा जो है वैसे प्रकट हो जाती है। जैसे कोयला होता है उसका राख जमती है तो आपको लगता है कि राख ही राख है, आप उसका हवा दोगे तो क्या होता है, हवा दोगे तो क्या होता है, वो राख निकल जाती है और कोयले में जो आग है वो प्रकट हो जाती है, कोयले का सत्य प्रकट हो जाता है कि कोयला जिंदा है कि राख बन चुका है। सत्य क्या है, उसका हवा देके देखो, और हवा देके केवल राख ही राख उड़ रही है और राख ही राख उड़ रही, राख भी समाप्त है, कुछ बचा नहीं वहां पर, मतलब कोयले में आग नहीं है, ये सत्य प्रकट हो गया। और राख अगर आग है तो भी वही प्रक्रिया है, वही फूंक देना है आपको, हवा देनी है तो वो ऊपर का उड़ जाएगा, अंदर की अग्नि जो है वो प्रकट हो जाएगी, दोनों तरफ से रियलिटी प्रकट हो जाएगी, है या नहीं है। उसी तरह से भगवान का नाम जप करने से आपकी जो रियलिटी है कि मैं आत्मा हूं वो प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये आवरण गुणों का आवरण होता है, तमोगुण रजोगुण तमो सत्वगुण का, ये आवरण कर्मों का होता है कि पिछले जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे उसका आवरण होता है। और अभी हमने जो सोचा अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पावरफुल हूँ वगैरह वगैरह, वो सारे आवरण होते हैं, बहुत सारे आवरण होते हैं जो जो हमने डाले हैं उसके ऊपर, वो सब होते हैं। सबसे पहले अगर आपने पहली बार ध्यान पूर्वक जप किया तो आपके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, और उसके बाद में आपका जो पद का आसक्ति है, आपका जो शरीर का आसक्ति है, कौटुंबिक आसक्ति है, पैसे से आसक्ति है, जहां पर आप हैं वहां से आसक्ति है, आपका जन्म स्थान से आसक्ति है, आपके रहने वाले घर से आसक्ति है, जो भी 50 आसक्तियां पड़ी हुई है, वो सब आसक्तियां धीरे धीरे नष्ट होती है, और लास्ट में आपका क्या नष्ट होता है, अहम नष्ट होता है। वो लास्ट में सब कुछ नष्ट होने के बाद मैं हूं एक होता है ना चीज, मैं हूं, तो क्या हुआ मेरा पैसा चला गया, तो क्या हुआ मेरा पद चला गया, तो क्या हुआ मेरा जॉब चला गया, मैं अभी हूं ना, मैं हूं, ये मैं का जो होना का जो भाव होता है ना उसको अहंकार कहते हैं। वो लास्ट तक निकलता नहीं, क्योंकि वो सबसे अंदर चिपका हुआ है उसके ऊपर, है ना। कभी कभी हम लोग वो निकलते ना, छिलका निकालते ना, तो कितना मुश्किल निकालने को होता है ना, बहुत सारा निकलता है, वो लास्ट वाला निकलता ही नहीं, बहुत अंदर, या तो वो पूरा खींच के लेके आएगा या तो निकलेगा नहीं, वो इतना चिपका हुआ है उसको, वैसे अहंकार होता है। इसलिए ये लंबी प्रक्रिया है, उसको श्रद्धा से करते रहना चाहिए। अभी आपको समझो कोई बोलेगा कि अरे आपको रोज स्नान करना पड़ेगा, बोला क्या बात कर रहे हो, रोज स्नान करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस, इतना टाइम किसके पास है। लेकिन रियलिटी क्या है, रोज स्नान करना पड़ेगा, रोज ब्रश करना पड़ेगा, अरे बाप रे क्या है, एक बार किया ना संडे को मैंने लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसको रोज करना ही पड़ता है, आप कुछ भी बोलो, कभी दिन में दो बार भी करना पड़ता है। अगर आपको स्टेटस को मेंटेन करना है क्लीनलीनेस का, तो आपको रोज तो करना ही पड़ेगा। कितना भी सुंदर व्यक्ति होगा, मिस यूनिवर्स मिस्टर यूनिवर्स होगा, सुंदर होगा, स्नान तो करना ही पड़ेगा ना रोज। जैसा उसी तरह से ये जप की प्रक्रिया को रोज करना पड़ेगा, रोज आत्मा को स्नान कराना पड़ेगा भगवान नाम के जप से, तो फिर जो ऊपर है वो पहले जाएगा, उसके बाद वाला बाद में जाएगा, धीरे 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 अंदर घुसेंगे आप, फिर आपको पता चलेगा अरे अंदर ये था क्या, मैं तो समझ रही थी कि ये था है ना। बिल्कुल, मैं ना एक तो जनरल फिजिशियन हूँ, ओके, और उसके बाद मैंने लास्ट स्टेज में लोग होते ना, एकदम लास्ट स्टेज में अंतिम स्थिति में होते ना मृत्यु के साथ, उनके विषय में मैंने स्पेशलाइज किया है। उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर, टर्मिनली इल पीपल। ये एक आपका दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण क्या है, अरे आप तो डॉक्टर हो फिर भी आप भक्त कैसे हो, है ना, ऐसा लोग सोचते ना।
बेसिकली आप लोग जो स्टडी करते हैं तो रिलेटेड टू बॉडी ही करते हैं ना, फुल स्टडी।
यस,
तो उसमें और इसमें दोनों में बहुत अलग अलग चीजें
हैं, ऐसा आपको लगता है। ये तो उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए मेरा उत्तर। तो एक आपका दृष्टिकोण ये है कि आपको लग रहा है अरे आप डॉक्टर हो और आपको ये कैसे आप कर रहे हो, अरे लेकिन आप जस्ट थोड़ा सा जरा प्लीज। तो मेरा आपको मैं अभी दूसरा दृष्टिकोण दे रहा हूँ, अनदर एंगल। अरे हमने सभी इतना डीप में शरीर स्टडी किया है शरीर के बारे में, और हम रोज देख रहे हैं कि वो शरीर मर रहा है, वो शरीर बूढ़ा हो रहा है। हाँ आप पता है, एक वो हमारी बचपन की हीरोइन थी जिन्नत अमान, कैसी थी वो उस समय पे, और वो पेशेंट बन के हमारे पास आई थी और हमने उसका पूरा अवतार देखा है, क्या स्थिति हो गई थी उसकी। अभी जब हम ये देखते हैं तो हमारे लिए गीता समझना आसान है कि डिफिकल्ट है, बताइए आप। मेरा तो ये विचार है, आपका पता नहीं, मेरा विचार यह है कि मेडिकल में आने के बाद में अध्यात्म समझना बड़ा आसान हो जाता है अगर आपकी आंखें और दिमाग खुला हुआ है तो। हाँ, क्योंकि हम लोग एक तो पहले मुर्दे काटते हैं स्टडी करने के लिए, और जब होके डॉक्टर बनते हैं तो लोग जिंदा लोगों को मरते हुए देखते हैं, बीमार होते देखते हैं, सुंदर सुंदर लोगों को बीमार होने में कैसे दिखते वो, इमेजिन। भाई मेरे मेडिकल करियर में एक बार ऐश्वर्या राय का फ्रैक्चर हुआ था और वो हिंदुजा में एडमिट हो गई थी, उसके फोटो आए थे उस समय, लुकिंग सो ऑर्डिनरी, क्योंकि वही रियलिटी है, वही रियलिटी है। आप किसी सुंदर व्यक्ति को, किसी फिल्म स्टार को, किसी बड़े आदमी को हॉस्पिटल के बेड पे देखो एडमिट होने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है, हाउ डज ही लुक। तो आप मुझे बताइए, अभी जब हम लोग रोज दिन दहाड़े ये देख रहे हैं तो समझना ये आसान है कि मुश्किल है? हाँ, तो ये आपका उत्तर है मेरे प्रश्न का, आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि जितना आप हम लोग के विषय में स्टडी करते हो ना, हमारे विषय में, उतना वो आसान हो जाता है सत्य को स्वीकारने में, कि यही सत्य है। रोज देखते हैं, रोज इतना सा बालक भी 1500 ग्राम का भी आता है उधर, और 80 साल का बुढ़ा भी आता है, सब लोग बीमार होकर हमारे पास में आते हैं। आपको कभी मिलते नहीं है वो, हमको मिलते हैं बीमार बुढ़ा होने के बाद में। दिस इज देहिन अस्मिन यथा दोहे, ये सत्य है। और वो फिल्म स्टार को भी लागू है, और सबसे ब्यूटीफुल लड़की को भी लागू है, और प्रधानमंत्री को भी लागू है। नो बडी इज फ्री फ्रॉम दैट। इसलिए वो समझना आसान है मेडिकल फील्ड में लेकर। आपको अगर यहां पर लिखा है ना, माम उपेत्य तु कौन्ते य दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया दुख से भरी हुई है, देखना है तो हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, आपको हर कदम पर सत्य मिलेगा। वो क्या बोल रहे? तो आई होप यू बिलीव मी व्हाट आई सेइंग। सो यही है ना, अगर आपको भगवान जो कह रहे हैं वो, अगर आपको दिन दहाड़े सामने देखना है, हॉस्पिटल में आके बैठो, फिर देखो क्या हो रहा है वहां पर, कैसे लोग आते हैं ऐसा पेट पकड़ के, कैसे आते बड़े बड़े लोग ऐसा हाथ जोड़ के वहां पर अपने ऑफिस में, ऐसा गबर बन के बैठते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देंगे आपको, मिलने भी नहीं देंगे, वहां पर हाथ जोड़ के, डॉक्टर जल्दी अच्छा करो, पेट दुख रहा है, वो स्टोन का पेन हो रहा है, वो तड़प रहा है बेचारा। आपको पता है स्टोन का पेन कैसा होता है? बड़े बड़े आदमी जमीन पर लेट पोट होते हैं ना, ऐसा रोलिंग ऑन द ग्राउंड विद पेन एंड क्राइंग। कितना भी बड़ा आदमी होगा तो जब उसको स्टोन का पेन होता है ना, तो वो पता नहीं क्या होता है उसको, देयर इज रियलिटी। वो कितना भी उसका प्रकाशन नहीं करेगा, वो टीवी पर नहीं, ऐड नहीं आएगा उसका कि ऐसा ऐसा इसको हो गया, फोटो नहीं आएंगी व्हाट्सएप पर, लेकिन वो रियलिटी है उधर। जब हमारे अटल बिहारी जी कितने साल में, किधर फोटो नहीं आया उनका, पेपर में, टीवी में, किधर भी उनको एज अ प्लान कभी प्रकाशित नहीं किया उनको, क्यों? क्योंकि उसके लायक नहीं रहे वो, कई साल तक बिस्तर में पड़े रहे वो, और अंत में भी उनका खाली चेहरा ही दिखाया, बाकी सब फूलों से लदा हुआ दिखाया, क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं रहे थे वो, उनका शरीर ऐसा जर्जर हो गया था। और वही सत्य है, समझ लो आप इस बात को, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ये जब देखते हैं हम दुनिया में, आंखें खोलकर देखते हैं, दिमाग खुला हुआ देखते हैं, तो आपको इसमें बहुत आसानी हो जाएगी समझना, मुश्किल नहीं हो जाएगी। और कोई प्रश्न है? सबसे पहले जब आत्मा यहां गिरती है तो वो देवता बनते हैं, फिर देवता के शरीर में भी और कुछ खराब काम करते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, और मनुष्य में शरीर में मिलने के बाद में फिर और पाप करते हुए जानवर बन जाते हैं, दे गो डाउन। पहले भगवान ना गिरने वाले व्यक्ति को भी अच्छा मौका देते हैं, लेकिन गिरने वाले व्यक्ति का दिमाग फिरा हुआ है तो फिर वो उसका भी दुरुपयोग करेगा और गलत काम करेगा, उसका गलत परिणाम प्राप्त करेगा। गॉड इज वेरी मर्सीफुल, वो कभी भी किसी व्यक्ति को अपने को छोड़ के जाने को देता नहीं है वो, लेकिन आपको जाना ही है तो फिर जाना पड़ता है, फिर वो भी अच्छा जन्म देते हैं, अच्छे बुद्धि वाला, अच्छे ज्ञान वाला, अच्छे सराउंडिंग में, फिर भी वो गुनेह करता है, फिर वो आगे आगे बढ़ता है, फिर उसका पतन हो जाता है। और अगर वो एक बार वो साइकिल में घुस गया ना, फिर उसका एक क्रम है, उसका उसी को पार करके फिर दोबारा मनुष्य के शरीर में आएगा, शॉर्टकट में नहीं आएगा फिर वो।
तो ये मनुष्य योनि वापस
आ सकती है? आ सकती है, जैसे हम लोग बैठे ना मनुष्य शरीर में, यही प्रूफ है ना उसका, आई एम इन ह्यूमन बॉडी, यू आर इन ह्यूमन बॉडी, दिस इज द प्रूफ ऑफ टूडे स्टेटमेंट। ये शरीर मरेगा, लेकिन कब मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो हमने किया है उसके अनुसार शरीर प्राप्त करेंगे। जब तक वो पुरा नहीं होता है तब तक वो आगे 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 बढ़ता जाएगा, उसका मरेगा ना, उसका एक सिक्वेंस है। एक बार मनुष्य योनि से नीचे उतर गए आप, तो उसका एक सीक्वेंस है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें शॉर्टकट नहीं होगा। हाँ, इसलिए आज हम और आप मनुष्य है, थोड़ा बच्चों को जरा समझना प्लीज, आई एम गेटिंग लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर आज आप जान रहे हैं कि आज आप मनुष्य हैं निश्चित रूप से, और आपको ये स्थिति बनाए रखनी है स्टेटस को, तो आपको कुछ करना होगा उसके लिए। टू मेक श्योर दैट यू डोंट फॉल डाउन. तो भगवान ने वादा किया है कि समझो आप इस मार्ग पर चले और ये मार्ग पर पूरा नहीं हुआ काम आपका, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पुनः मनुष्य बनेंगे. कृष्णा इज गारंटीड हियर कि सुचिनाम श्रीमताम देहे योगो भ्रष्ट बिजायते. उन्होंने कहा कि फिर आप तीन जगह जाएंगे, या तो एक अमीर घर में जाएंगे, या तो भक्त के घर में जन्म लेंगे, ऐसे उन्होंने बताया है. सो ये अध्यात्म का पालन करने से आप आज के तारीख में कम से कम ये अश्योर कर रहे हो कि आप मनुष्य जन्म में ही फिर आएंगे. अगर ये नहीं कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो फिर कौन से योनि में जाएंगे कोई भरोसा नहीं उसका. लेकिन भगवान का भजन करने से ये अपने आप को आप गारंटी दे रहे हो कि इस जन्म के बाद में भी आप मनुष्य ही बनेंगे. और आपको दोबारा आज जहाँ समाप्त किया है अचीवमेंट, उसी से आगे अचीवमेंट आगे करने का मौका आपको दिया जाएगा. आज मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो अगले जन्म में डॉक्टर नहीं बनता हूँ, फिर से स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी. बट स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपने कमाया है वो जहाँ पर आपने छोड़ा है, जो 55% आपने किया अचीवमेंट, तो नेक्स्ट लाइफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम 55% ऑनवर्ड्स. क्यों ऐसे? क्योंकि आत्मा के स्तर पर आपने जो भी किया है वो आत्मा के साथ जाएगा अचीवमेंट. जो शरीर पे स्तर पर किया है वो शरीर यहाँ नष्ट हो जाएगा, उसके साथ वो भी नष्ट हो जाएगा. सो वॉट एवर इज मटीरियल विल बी लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ टाइम, वॉट एवर इज स्पिरिचुअल विल कंटिन्यू, बिकॉज इसमें शाश्वत कौन है? शरीर में आत्मा में? आत्मा. मन शाश्वत नहीं है, मन बदलता है, मन शरीर का भाग है, आत्मा का भाग नहीं है. आत्मा के ऊपर दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, उसको मन बुद्धि अहंकार कहते हैं. एक शरीर जो दिख रहा है मुझे वो पंच महाभूत से बना है, ओके? और लेकिन वो सूक्ष्म और ये स्थूल दोनों टेम्पररी है, दोनों बदलते हैं, नष्ट भी होते हैं. आत्मा स्थिर रहती है, वैसे के वैसे रहती है, क्योंकि वो शाश्वत है. नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, उसको ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना छुरी काट सकती है, वो वैसे ही रहती है, काल का प्रभाव उस पर नहीं होता है. तो वो उस स्तर पर आपने जो अचीवमेंट किया है स्पिरिचुअल अचीवमेंट, वो अगले शरीर में जाने पर भी वही रहता है और वहाँ से वो आगे चालू करता है. और शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर आपने जो भी अचीवमेंट किया है वो इसी शरीर के साथ में नष्ट हो जाएगा और नया शरीर से आपको आरंभ करना पड़ेगा. अभी आज जो नॉलेज मेरे पास है मेडिकल का है वो मेरे साथ नेक्स्ट टाइम में नहीं रहेगा, बट मैं वही रहूँगा. मेरे साथ जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो आगे चला जाएगा. इसलिए बुद्धिमानी क्या है कि डोंट वर्क ऑन दोज थिंग्स विच कैनॉट बी कैरिड बाई यू इन फ्यूचर. वर्क ऑन दोज थिंग्स विच कैन बी कैरिड बाई यू इन फ्यूचर. जो चीज घाटे का ही सौदा है उस पर धन मत लगाओ. आपका जो आपके साथ में चलने वाला है, जो आपका अचीवमेंट है, जो आपको कैरी कर सकते हो, उसी पर काम करो. दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज कॉल्ड एज सद असद विवेक बुद्धि. सद और असद, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसको जानने वाली विवेक बुद्धि है. वो बुद्धि आध्यात्मिक क्रिया करने से प्राप्त होती है, जप करने से प्राप्त होती है. और अब हम लोग जो बुद्धि समझते हैं, जो MBBS करने की आवश्यकता है, साइंटिस्ट बनने के लिए, आकाश में वो इसरो के लिए यान भेजना है, वो जो बुद्धि है वो भौतिक बुद्धि है. इट इज़ मटीरियल इंटेलिजेंस यूज टू मैनिपुलेट मटीरियल थिंग्स, लाइक यहाँ की वस्तु आप आकाश में भेज रहे हो. बट वो सब करने से आपको आत्मज्ञान होगा ये इसका गारंटी नहीं है. मृत्यु आएगी, सब छीन के ले जाएगी, आपका सारा नॉलेज भी छीन के लेके जाएगी. एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट स्टीलेबल और डिस्ट्रॉयबल, वो आपके साथ जाएगा. तो सद असद विवेक बुद्धि का मतलब क्या है कि वो बुद्धि जो फर्क करती है अच्छा और बुरा के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में, स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में जो फर्क करती है, उसको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं. और वो बुद्धि भगवान नाम जप करने से पैदा होती है, और वो पैदा करना हमारा काम है. आपको फैसिलिटी दिया हुआ है, आप यूज नहीं कर रहे उसको, तो क्या करेंगे? यू हैव टू यूज द फैसिलिटी एंड अवेल द रिजल्ट्स व्हाट यू डिजर्व. आप उसके योग्य हैं, आप वो आपकी योग्यता है, वो यू हैव टू गेट व्हाट यू डिजर्व। और कोई प्रश्न है? हमने जो फेलोशिप किया था वो पूरा एक एक प्रश्न में उनको उत्तर चाहते हैं,
क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट है।
बट गुड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमारा विषय है। हाँ, तो आपका विचार क्या करना चाहिए, है ना?
हाँ, कि उनको इतने कम समय में,
होश में है क्या?
अभी तो मैं उनसे बात नहीं किया।
नहीं, होश में है कि बेहोश है?
नहीं,
तो मोस्टली बेहोशी होंगी। अगर ये बात सही है जो आप कह रहे हो, तो उनको केवल उनके नाम में भगवान नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ कुछ कर ही नहीं सकते नहीं अगर लास्ट स्टेज में है, क्योंकि अंतिम समय पर केवल भगवान नाम ही बचा सकता है। और बचाने का मतलब क्या है? क्या मौत से बचाएगा? नहीं, मौत तो आने वाली है, उससे नहीं बच सकते आप। बच किससे सकते हैं? भगवान की विस्मृति में दोबारा किसी अन्य योनि में आने से बच सकते हैं, और भगवान की स्मृति में अगर आप जाएंगे तो भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, अगर भाग्य रहेगा आपका। तो वो खूब कर्मों का बहुत मुश्किल हिसाब किताब है, लेकिन अगर आपने उनको भगवान नाम के बारे में सुनाया, भगवान नाम सुनाया उनको, प्रेम से सुनाया, और समझो 50 नाम में एक नाम सुना उसने, है ना, तो वो उसका कल्याण हो गया उसके अंदर। समझो अभी आप मेरे सामने बैठे हो, लेकिन कुछ बहुत भयंकर संकट में बिजी हो आप, और बार बार बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, और एक बार मेरा नाम सुन लिया तो एक बार मुड़के मुड़के देखोगे ना आप, है ना। वैसे मृत्यु के समय में बहुत शोर रहता है मन में, बहुत सारी चीज़ें दिखती रहती है उस समय, यमदूत दिखते रहते हैं उस समय पर, मरने का भय भी चलते रहता है, मरना भी नहीं है, और कर्मों का खेल सब दिखाई पड़ता है, मैंने क्या क्या बुरा किया, अच्छा किया, ये सब कुछ क्या कहते हैं ना, बहुत बड़ा कश्मकश संघर्ष उस समय चलते रहता है। तो आदमी ना यहाँ वहाँ ऐसे बहुत मुश्किल में रहता है। उस समय आप पुकार रहे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, प्रभु जी सुनो, मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनो हरे कृष्णा, और एक बार भी सुन लिया 50 बार में से, एक बार भी उसका ध्यान आपके ऊपर पुकार में गया और उस समय मृत्यु हो गई, तो वो बच गया। बच गया किससे? वापस पतन होने से बच गया वो। इसलिए हम लोग हमारे एंड ऑफ लाइफ केयर में, हॉस्पिस में, जो जो हमारा विषय है अंतिम स्थिति में, वो अंतिम स्थिति में हम लोग केवल यही करते हैं। जब वो अंतिम में नहीं रहते हैं तो उनको पेन मैनेजमेंट देते हैं, उनको स्टेबल रखते हैं, ताकि उनसे बात कर सकते हैं हम लोग, उनको समझा सकते हैं कि मृत्यु बहुत पास में है, अभी आप सब कुछ छोड़कर तैयार हो जाओ, कुछ भी करने से ये अटल है, आपको मन की तैयारी करनी चाहिए। उस समय वो करते हैं प्रिपरेशन, और अंतिम स्थान स्थिति आ गई तो केवल यही करते हैं, जो लास्ट का हमारा जो लास्ट वेपन है उस पर चलाते हैं उसको, तुलसी रखते हैं, कीर्तन करते हैं साथ में बाजू में, उनको तुलसी का जल पिलाते हैं, बाकी सब लोगों को कीर्तन कराते हैं, उनके हाथ से तुलसी का जल देते हैं उनको, उनके हाथ पर शरीर पर भगवान को पहने हुए माला पहनाते हैं, भगवान के धाम के रज सर पे लगाते हैं, भगवान का चरणामृत मुँह में डालते हैं, तुलसी जवान पे रखते हैं, जो भी चीज़ से भगवान का संपर्क उसका हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, वो सब चीज़ करते हैं। ये न के न प्रकार है न उनका भगवान का साथ संपर्क हो जाए, कैसे भी करके अगर आत्मा तक हमारी पुकार पहुंच गई और उसने सुन लिया हमारी बात को उस कश्मकश में, संघर्ष में, तो वो भगवान के धाम जा सकता है। जाना उसको है, वो हम लोग तो खाली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करना जरूर चाहिए। बाकी रोना धोना क्या होगा, कैसे होगा, छाती पीट कर जोर जोर से रो रहे हैं, हम लोग कहते हैं मत रो, अभी उनको तुलसी का जल दो, उनके लिए भगवान नाम का जप करो, आपका अगर सही प्रेम है तो रोने से क्या होने वाला है, उनके कल्याण का कार्य करो आप, बाद में मरेंगे तो आराम से रोना आप, अभी वो जिंदा है, आपके मदद की अपेक्षा में बैठे हैं वो, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। आप अगर नाम पुकारेंगे तो सबके नाम पुकारने से भगवान भी पिघल जाएंगे और सुनेंगे आपका नाम भगवान का। दिस इज नॉलेज। लोग खाली सोचते हैं कि अरे हमारा प्रिय व्यक्ति जा रहा है, इतने लोग जमा हो गए हैं, सब लोग रो रहे हैं, लेकिन सब लोग रोने से उसका आगे का रास्ता रुक जाता है, वो आगे जाना है उसको निश्चित रूप से, लेकिन जा नहीं पाता है वो। आई विल गिव एग्जाम्पल टू यू, जब इतने कितनी माताएं बैठी, कितने बच्चे हैं, हाँ आप अभी कहीं काम पे जा रहे हो, आपको सुबह का टाइम काम हो गया है और बच्चे को 1 घंटे के बाद में स्कूल जाना है, वो आपके घर के जो असिस्टेंट है वो उसको भेजने वाली, लेकिन आप जब काम पे भाग जाते हो तो बच्चा रो के मम्मी करके आता है पीछे, कैन यू गो स्ट्रेट? टाइम हो गया मेरा, अभी बच्चा रो रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, टाइम हो गया मेरा, जाना है, बस आ गई, आप वापस आएंगे, बेटा डोंट वरी, आई विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर यू, डोंट वरी, टुडे इवनिंग विल गो टू मॉल, विल प्ले दिस दैट, डोंट क्राई बेटा, बी अ गुड बॉय, हाँ वो शांत हो गया, फिर जाते हो, फिर वो रो के मम्मी करके पीछे आता है, फिर आप वापस वापस आते हो, है ना? तो क्या हो रहा है, आप तो जाने ही वाले हो लेकिन आपके जाने में काफी अवरोध हो रहा है, आपको वापस आना जाना जाना, आप बीच में आप अटक रहे हो बार बार। वैसे ही मरने के समय पर अगर आपको बहुत छाती पीट कर रोते हैं ना, तो आत्मा भी ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहता है, ही हैज टू गो, ही कैनॉट नॉट गो। मम्मी को आज छुट्टी लेने का चांस नहीं है, नो सीएल टुडे, शी हैज टू गो। तो आत्मा को भी जाना है, उसका शरीर का काल समाप्त हो गया है, उसको जाना ही है, लेकिन हमारे छाती पीट के रोने से उसकी आत्मा आगे पीछे होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं अभी मत रो, अभी उसको भगवान का नाम लो, उसके लिए प्रार्थना करो। और शास्त्र में लिखा भी है कि शरीर छूटने के बाद में जब उसकी आगे की गति होने वाली होती है, उस समय उसके लिए आपके आंसू काम नहीं आते हैं, आपकी केवल भगवान की पुकार और उसके लिए की हुई प्रार्थना ही उसका पोषण देती है उसको। वॉट नरिशेस हिम इज योअर प्रेयर्स, एंड इट इज ऑल्सो सेड कि वो आत्मा उस गति में आगे वाले शरीर को छोड़ने वाले आगे वाले गति में आपको धन्यवाद देते रहता है, उन व्यक्तियों को जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको थैंक यू करते करते आगे जाते, क्योंकि उस समय उनका फ्यूल जो है ना वो प्रेयर्स होता है आगे जाने का। अभी आपका कोई पोजीशन है, आप डॉक्टर हो, बड़े आदमी हो, बहुत पैसे वाले हो, उसका वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओनली योर प्रेयर्स विल गिव नरिशमेंट टू हिम टू गो अहेड इन द ऑनवर्ड जर्नी। तो हम लोग कहते हैं अभी रोना मत, आप प्लीज रोना मत, इफ यू रियली लव दिस पर्सन प्रे फॉर हिम, प्रे टू गॉड टू हेल्प हिम टू टेक हिम क्लोज टू यू, फिर आपकी पुकार सुनकर भगवान उसको अपने पास लेंगे। ओके वही तो कह रहा हूं मैं, बहुत कष्ट होता है, माता को काम पे जाना है, लेट हो रहा है, लेट मार्क भूलोगा तो कष्ट हो रहा है कि नहीं उसको, बच्चे के रोने से वैसे उसको भी कष्ट होता है। वो तो भोगना ही है उसको, लेकिन निचली योनि से बचाना भी की इम्पोर्टेंट काम है कि नहीं?
हाँ नहीं, लेकिन मतलब ये भी है क्या कि जो एक भी बार भगवान का नाम बोलने से वो भी भगवत मतलब भगवान की शरण में।
देखो ये सब है ना, एक बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। जैसे वो आदमी कश्मकश में है, बहुत संघर्ष में है, बहुत परेशान है, उसका अपना स्ट्रगल चल रहा है मरने के समय पर, और आप 50 बार नाम सुना रहे हो उसका, जिस वक्त वो नाम सुनेगा उस वक्त मर जाएगा ना, तो उसका उद्धार हो गया। इसलिए हम कंटिन्यूस करते हैं, कंटिन्यूस क्यों करते हैं, कवर ऑल द टाइम, डोंट वेट फॉर दैट टाइम, यू डोंट नो व्हाट टाइम, कवर ऑल द टाइम बिफोर एंड आफ्टर, उसके बीच में कहीं अगर उसने सुन लिया तो उसका भाग्य है वो, लेकिन अगर उसको नहीं सुनना है तो उसका दुर्भाग्य है, आपने आपका कर्तव्य कर दिया। उससे क्या होगा बताए, जब आप नाम करेंगे ना उसके आजू बाजू में, तो यमदूत नहीं आएंगे उसके पास, फिर कौन आएगा, विष्णु के दूत आएंगे आपका नाम सुनने से। विष्णु दूतों का वो काम है और यम दूतों को वो आदेश है कि वहां पर नहीं जाना जहां भगवान का नाम लिया जा रहा है, भले उसके द्वारा नहीं हो बाकी लोगों के द्वारा हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो उसको वैकुंठ नहीं भेज रहे, चलो एक्सेप्टेड को उसको नहीं सुनना है, लेकिन उसको यमदूत के चक्र से बचा रहे हैं, यमदूत के चक्र से बचेगा वो, दूसरे लोग आएंगे और इत्मीनान से प्रेम से उसको मनुष्य शरीर में लेके जाएंगे। और ये सब कब होगा कि आपको सुनना नहीं है लेकिन लोग सुना रहे हैं, ये कब होगा, अरे उसके लिए भी अच्छे कर्म की आवश्यकता है, वो अपने आप नहीं होगा, अरे रोड पे मर जाएगा एक्सीडेंट में, वो उसको लोग मिलेंगे नहीं प्रार्थना करने वाले, लेकिन वो अगर हमारे पास हॉस्पिटल में आएगा वो भी उसका एक पुण्य होगा इसलिए आएगा उधर, वो नहीं तो आएगा नहीं, वो रोड पे ही खत्म हो जाएगा, आते आते ही ऑन द वे जान छोड़ देगा वो अपनी। तो ये भी सच है, इट्स नॉट इजी दैट एवरीबडी इज हियरिंग होली नेम बिफोर डाइंग, वो मर रहा है लोग 50 लोग जप कर रहे हैं, ये भी भाग्य की बात है बाबा, वैसे नहीं होता है। तो अभी इसका कंक्लूजन करते हैं, विल कंक्लूड नाउ। हाँ, कंक्लूजन क्या है? अभी ना सब कुछ सही है। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैत विशतु मे मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो क्या है कंक्लूजन? क्या है? अभी आपका सब कुछ सही है, अभी आपको हेडेक भी नहीं हो रहा है, आज आपको डिजास्टर में नहीं हो, सब कुछ पीसफुल हो, आज आराम से बैठ के यहाँ पर कथा सुन रहे हो एयर कंडीशन में। तो अभी अच्छे कंडीशन में मन को भगवान में लगा दो। मानस राज हंस, आज जब तक तो सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, नो रिलेटिवली ओके, मौत आपके सामने खड़ी नहीं आज। लेकिन बेटा बैठ जाओ नीचे। लेकिन जब मौत का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय, जब प्राण निकल जाने का समय आएगा तो क्या होगा? कंठ अवरोधन विधव, ये कंठ में कफ वात पित्त जो है ना आके अटक जाएंगे। तो स्मरणम कुतस्ते, कैसे मैं आपका नाम लूंगा? इतने संघर्ष में जब चौकअप हो रहा हूं तो आपका नाम कैसे लूंगा मैं? तो कब लेना चाहिए? आज लो, आज प्रैक्टिस करो। आज आपको आदत लग गई उसकी, तब वो आदत का लाभ होगा। जब अच्छे थे तब आदत नहीं बनाई, तो बुरे होंगे तभी आदत कैसे बनेगी? नॉट पॉसिबल, नॉट लॉजिकल ऑल्सो ना। जिसकी आपको प्रैक्टिस है वही आप कर सकते हो। अगर आप साउथ इंडियन हो और आपको सांबर रसम बनाने की आदत है तो वही आप कर सकते हो। वो महाराष्ट्र के आमटी नहीं बना सकते आप, क्योंकि उसके आपको हैबिट नहीं है। तो हैबिट बनाओ आप अच्छी वाली, जो आपको काम आएगी। तभी से भगवान का नाम उच्चारण करो, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंचरांदम। अभी जब मन स्वस्थ है तो मन को कृष्ण के चरणों में स्मृति में लगा दो। ऐसे वो कह रहे हैं राजा कुलशेखर, बहुत महान संत हुए थे, राजा ऋषि हुए थे वो। तो द टेक होम मैसेज इज, डोंट वेट फॉर अदर्स टू कम एंड चैंट फॉर यू। मैं कुछ नहीं करूंगा, अंतिम समय में मेरे सब भक्त लोग आएंगे और मेरे लिए पुकारेंगे। मैं क्यों करूंगा मेहनत? वो अपने आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसे। यू डू इट योर सेल्फ, ताकि जब लोग पुकारेंगे आपके लिए ना, तो आपको थट से आपका ध्यान उधर जाएगा, क्योंकि जिंदगी आपने सुना है नाम ना, वो अभी आपको उसकी पर लबन लगा रहेगा आपका, तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। नो स्ट्रगल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।